हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 40। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्बरधारण बिम्बत्फलधरोष्ठा पुरेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देव्येस्तवे, वेदे साङ्गपत् क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा, देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद पांचवा अध्याय जिसका शीर्षक है नारद द्वारा वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवतम का उपदेश देना। श्लोक नंबर 40। कृपा करके मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। नारद मुनि कहते हैं त्वामाप्यदप्र श्रुतवे श्रुतम विभो समाप्यतेन विदाम बुभुत्सितम् प्राख्याहि दुःखै मुहुरर्दितात्मनाम् संक्लेश निर्वाणमोक्ष तिनान्यथा त्वमप्यदप्र श्रुतवे श्रुतं विभु समाप्यते येन विदां विभुत्सितं प्राख्याहि दुःखै मुहुरर्दितात्मनां संक्लेश निर्वाणमोक्ष तिनान्यथा त्वमप्यदप्र श्रुतवे श्रुतं विभु समाप्यते येन विदां बुभुत्सितं प्राख्याहि दुःखै मुहुरर्दितात्मनां संक्लेश निर्वाणमोक्षन्ति नान्यथा त्वमप्यदप्र श्रुतवे श्रुतं विभु समाप्यते येन वेदां बुभुत्सितं प्राख्याहि दुःखै मुहुरर्दितात्मनां संक्लेश निर्वाणमोक्ष तिनान्यथा त्वमप्यदप्र श्रुतवे श्रुतं विभु समाप्यते येन विदां बुभुत्सितं प्राख्याहि दुःखै मुहुरर्दितात्मना संक्लेश निर्वाणमोक्ष तिनान्यथा त्वमप्यदप्र श्रुतवे श्रुतं विभु समाप्यते येन विदां बुभुत्सितं प्राख्याहि दुःखै मुहुरर्दितात्मनां संक्लेश निर्वाणमोक्ष तिनान्यथा त्वमप्यदप्र श्रुतवे श्रुतं विभु समाप्यते येन विदां बुभुत्सितं प्राख्याहि दुःखै मुहुरर्दितात्मनां संक्लेश निर्वाणमोक्ष तिनान्यथा। शब्दोकात् त्वम् अप्यद भ्र श्रुत विश्रुतं विभु। त्वम् मतलब तुम, अपि अर्थात भी, अदब्र विशाल, श्रुत यानी वैदिक सहायत, विश्रुतम सुना हुआ, विभो सर्वशक्तिमान का, यानी कि अब तुमने जितने भी वैदिक साहित्य में जितना भी सुना है, जो भी तुमने समझा है, वेद इतने सारे वेद लिख लिए, अब वेदों के अनुसार जो तुम्हें समझ में आया है विभु यानी भगवान का, सर्वशक्तिवान जो विभु भगवान हर जगह हर कण कण में व्याप्त है, उनकी सर्वशक्तिमत्ता का जो तुम्हें अनुभव हुआ है, आगे कहते हैं समाप्यते येन वेदां विभूत्सितम्। समाप्यते मतलब संतुष्ट येन जिससे विदाम विद्वानों का, विभूत्सितम् दिव्य ज्ञान सीखने के इच्छुकों को। अभी जो वाकई में दिव्य ज्ञान सीखना चाहते हैं, जो विद्वान है उनके लिए प्राख्याही, प्राख्याही का मतलब होता है अब तुम वो वर्णन करो। देखो आपने वेदों के अंदर बहुत कुछ सीखा है, भगवान के शक्ति सर्वशक्तिमत्ता के विषय में सीखा है, भगवान के नाम गुण लीला और रूपों के विषय में सुना है, समझा है। तो आप अब क्या करो, जो वाक्य में विद्वान है, जो वाक्य में विभूतितम यानी दिव्य ज्ञान सीखने के इच्छुक है, तो उनको जो तुमने पहले कबों वाली गंदगी रखी है ना, वो अभी हम वापस से थोड़ा रिपीट करेंगे। पहले क्या क्या बोला है नारद मुनि ने उनको कि तुमने जो ज्ञान लिखा है वो किस प्रकार का है। तो अभी तुम वाकई में जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुभुक्षितम है, जो इच्छा करते हैं उनके लिए प्राख्याही, उनके लिए वो वर्णन करो। और आगे कहते हैं प्राख्याही दुख मुहुरर्दितात्मना, प्राख्याही यानी वर्णन करो दुख है, दुखों से मुहुर सदैव अर्दितक, अर्दितक का मतलब होता है आत्मना पीड़ित जन समूह, यानी हम लोग बोलते हैं ना अर्थ जिज्ञासु, तो ये अर्थ होता है कि वो बहुत ही दुखी संसार में जीवात्मा, जो बारंबार संसर्ग संसार में आना जाना, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेशों में गिरना और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को झेलना, ये दुख संसार दुखमयी संसार में बारंबार आना, इससे बहुत पीड़ित हो गई है, जो जीव बहुत पीड़ित हो गए हैं, तो उनके संक्लेश निर्वाण शांति नान्यथा, संक्लेश उनके कष्टों को निर्वाणम का मतलब होता है शमन, खत्म करने के लिए उशंति ना निकल पाते हैं अन्यथा अन्य साधनों से। आपने बहुत सारे साधन बताए हैं पहले भी, जैसे बहुत सारे देवताओं की पूजाएं बताई, निराकार की पूजा बताई, बहुत सारी भौतिक कष्टों को कैसे समाप्त किया जाए वो तो तुमने बता दिया, मगर अब ये बताओ कि तुम ये भौतिक कष्टों के समाप्त करने से भी संतुष्ट नहीं होंगे, तुम्हारे वास्तविक जो क्लेश है संक्लेश, जो वास्तविक वास्तव में तुम्हारे कष्ट है, उनका निर्माण निवारण इन भौतिक जो मैंने साधन बताए हैं या जो दूसरे वेदों में जो ये मिला जुला कर सारी चीजें बताई हैं, उससे जीव का कल्याण नहीं होने वाला, उसके उसके समस्त कष्टों का समाप्ति नहीं होने वाली है। उसके लिए आप वो बताओ जो वेदों के अंदर सबसे गुह्य ज्ञान है, जो वेदों के अपार ज्ञान से तुमने जाना है कि वास्तविक जीव का कष्ट क्या है और वास्तविक उसके कष्टों का निवारण क्या है, सीधी बात बताओ डायरेक्टली। अब ये है ना, सब गोलमोल करके नहीं बताओ, अब आपका ना सबके साथ जो वाकई में ज्ञानी है और जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो भी उसी से संतुष्ट होंगे, और जो संसार में पीड़ित हैं बहुत दुखी हैं, जो उनको पता ही नहीं है कि क्या ज्ञान है, क्या मैं हूँ, क्या भगवान है, जो वाकई में कुछ नहीं जानते दिव्य ज्ञान के विषय में, उनके भी समस्त कष्टों का निवारण केवल भगवान की कथा से, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की कथाओं से होगा। तो आप कृपा करके अब वही बताइए। अनुवाद, अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वत जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का शमन होगा जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निस्संदेह इन कष्टों से उभरने का कोई अन्य साधन नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री नारद मुनि अपने व्यावहारिक ज्ञान से निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि भौतिक कर्म की सारी समस्याओं का मूल साधन परमेश्वर की दिव्य महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करने में है। सज्जनों की चार श्रेणियां होती हैं और दुर्जनों की भी उतनी ही श्रेणियां होती हैं। चारों श्रेणियों के सज्जन सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को तब स्वीकार करते हैं जब, नंबर एक, जब वे आपत्ति में पड़ते हैं, नंबर दो, जब वे धन की कमी खलती है उनको। नंबर 3, जब वे ज्ञान में बढ़ जाते हैं, तथा नंबर 4, जब वे ईश्वर के विषय में अधिकाधिक जानना चाहते हैं। वे अंतः प्रेरणावश भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार नारद जी वेद व्यास जी को उपदेश देते हैं कि वे भगवान की दिव्य ज्ञान का प्रसार उस विशाल वैदिक ज्ञान के रूप में करें जिन्हें उन्होंने पहले से प्राप्त कर रखा है। जहाँ तक दुर्जनों का संबंध है, उनकी भी 4 श्रेणियां हैं। नंबर 1, वे जो प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त हैं और इस तरह अनेक कष्टों को भोगते रहते हैं। नंबर 2, वे जो इंद्रिय तुष्टि के गर्हित कार्य में लगे रहते हैं और इस तरह परिणाम को भोगते हैं। नंबर 3, वे जो ज्ञान में तो अत्यधिक समृद्ध हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार ना कर सकने के कारण कष्ट पाते हैं। नंबर 4, वे लोग जो नास्तिक कहलाते हैं और जानबूझकर भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं, भले ही वे सदा संकट में क्यों ना रहें। श्री नारद जी ने व्यास देव को समझाया कि वे 8 प्रकार के सज्जन तथा दुर्जन लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान की महिमा का वर्णन करें। अतएव श्रीमद् भागवतम किन्हीं विशेष श्रेणी या संप्रदाय के लोगों के लिए निमित्त नहीं है, यह तो उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए है जो सचमुच अपने कल्याण तथा मन शांति का इच्छुक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद द्वारा वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवतम का उपदेश शीर्षक 5 अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत् कृपातमः वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। अत्यंत सुंदर नारद मुनि वेद व्यास जी को उपदेश देते हैं कि अब तुम भगवान की महिमा का वर्णन करो। याद है भक्तों, जब हम स्टार्ट में इस अध्याय को स्टार्ट किया था, तब वेद व्यास जी बहुत दुखी थे और सरस्वती के किनारे पर बहुत ही दुख की हालत में बैठे हुए थे। और जब नारद जी प्रकट हुए थे तो उन्होंने उनसे एक प्रश्न किया था। श्लोक नंबर 5 में व्यास उवाच, उन्होंने कहा, अस्तेव मे सर्वमेदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमागाधबोधं पृच्छामहे त्वा मव भवात्मभूतम्। अर्थात व्यास देव ने कहा, अस्तेव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम्, आपने जो कुछ भी बोला है वो सत्य है, आपने जो कहा है वैसा ही है, तथापि नात्मा परितुष्यते मे, फिर भी मेरी आत्मा को संतुष्ट नहीं हो रहा है। मैंने इतना सब, क्योंकि नारद मुनि ने कहा था कि आपने इतना अच्छा किया है, बहुत अच्छे से वेद बताए हैं, संतुष्ट हो गए होंगे, लेकिन अपने गुरु के सामने वो कहते हैं कि नहीं, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। तन्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम पृच्छामहे त्वात्म भवात्म भूत, आप क्योंकि स्वयंभू से उत्पन्न हुए हैं, यानी बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न हुए हैं, वो ब्रह्मा जी जो बिना माता पिता के उत्पन्न हुए आप उनकी संतान हैं, तो उनकी संतान होने के कारण आपके पास अगाध ज्ञान है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरी असंतुष्टि का वास्तविक कारण क्या है। तब नारद जी ने बताया श्लोक नंबर 8 में, भवतानु दित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तत्दर्शनम खिलम। बोला बताओ तुम्हारे दुख का असंतुष्ट का क्या कारण क्या है। भवतानुदितम प्रायम, तुमने भवत यानी तुम्हारे द्वारा जो कुछ भी आपने बताया है, यशो भगवतो मलम, उसमें भगवान के उस अमर यश के विषय में तो आपने कुछ बताया ही नहीं है। भगवान के कीर्ति, भगवान के नाम की महिमा, भगवान की लीलाओं के विषय में तो कुछ बताया ही नहीं। ये न वासो न तुष्येत मन यदि दर्शनम खिलम, तो इसलिए क्योंकि उसमें भगवान की महिमा नहीं है तो वो ऐसा कोई भी ज्ञान जीव को संतुष्ट नहीं कर सकता है। ये नए वासो न तुष्येत, वो आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, बल्कि मन्ये तद दर्शनम खिलम, उस ऐसा सारा दर्शन ऐसा सारा साहित्य तो खिलम है, व्यर्थ समझा जाएगा। क्योंकि पढ़ोगे फिर भी वास्तविक ज्ञान तो किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं, क्योंकि वास्तविकता जीव की क्या है कि उसको वो भगवान का अंश है और उसको आनंद किससे आएगा, भगवान के विषय में जानने से आनंद आएगा। जैसे भगवान बताते 9.10 में, मच्चिता मच्चिता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति चरमर्ति च। 10.9 में भगवान ने बताया कि जो मेरे भक्त हैं, शुद्ध भक्तों के विचार मच्चिता मच्चिता प्राण, उनके चित्त मुझ में लगे होते हैं, उनके प्राण मुझ में लगे होते हैं, उनकी उनका जीवन मेरी सेवा में अर्पित होता है। और बोधयस्ता परम्पर, वो जब भी कभी किसी बात करते हैं उनके मुखारविंद से केवल कथयंतस्य माम नित्यम, मेरे बारे में खाली बात निकलती है। वो सुनना चाहते केवल मेरे बारे में, वो बोलना चाहते केवल मेरे बारे में, और इसी से तुष्यंति चरमंति च, संतुष्टि भी उसी से आती है, आनंद भी उसी से आता है। और जिससे संतुष्टि और आनंद आता है वो बात तो तुमने बताई नहीं है, तो फिर कैसे संतुष्ट हो सकते हो। और श्लोक नंबर 9 में तो तातव उनकी गलती का उन्हें एहसास दिलाया कि यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णित। यथा धर्मादयश्चार्थ, तुमने चार नियम जो धर्म के हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनके विषय में तो बड़े विस्तार से बता दिया। महिमानु मुनि वर्यमानु कीर्तिता, बहुत ही अच्छे तरीके से तुमने उनके बारे में बताया। न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णित, भगवान वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन नहीं किया तुमने, कैसे संतुष्ट हो सकते हो। हर श्लोक नंबर 10 जिसमें समस्त वेदों की भत्सना की है एक तरह से नारद मुनि ने, और कहने लगे नायत्वचित्रपादं हरिर्यशो जगत पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसंतीतमुशंति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षया। अर्थात न यच्चित्र पदम हरे यशो, वो वचन वो वाणी जो भगवान के जगत पवित्र परिप्रगृहित कर हिचे, जो भगवान के पवित्र नाम जिससे पूरा ब्रह्मांड पवित्र होता है, जिससे पूरा संसार पवित्र होता है, वो वाणी जिसमें उनके यश का बखान नहीं किया जाता है, तत् वायसम तीर्थम उशंति मानसा, जो वास्तव में मानस होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, उस वाणी को उस साहित्य को क्या कहते हैं, वायसम तीर्थ यानी कौओं का तीर्थ कहते हैं। कौवे जिस तरह गंदगी में बैठते ना, उनको आनंद नहीं आता है साफ सुथरी जगह पर, तो वहां पर गंदगी में बैठे होंगे, तो उसमें क्या है, वेदों में क्या बताया गया, ये तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो ये करो, ये प्रॉब्लम सॉल्व, हरे यश तो नहीं है ना, सारी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने से, ऐसा तो नहीं बताया। तो न यत्र हंसा निरमल निरमंत्यु शिक्षया, कि जो वास्तव में हंस होते हैं, परम हंस, उस वो दिव्य धाम के वासी होते हैं, ये बताया ना, जो उशिक्षया, इसका मतलब है वो वास्तविक में साधारण ऐसी चीजों में कभी भी आकर्षित नहीं होते हैं जिसमें मिला जुला के सब कुछ दिया गया और डायरेक्ट से भगवान की भक्ति के विषय में, तो उसमें आकर्षित नहीं होते। जिस तरह से हंस खाली दूध का सेवन करता है, पानी नहीं यूज करता अपने पीने में, तो फिर उसी तरह से जो वास्तविक भक्त होते हैं वो भी केवल खालिस भक्ति चाहिए होती है उनको, प्योर कृष्ण भक्ति चाहिए होती, और तुमने तो सारा मिला जुला के दे दिया तो ऐसा लगता है कौवों का तीर्थ है, गंदगी सारी परी हुई है, उसमें से क्या ढूंढ ढूंढ के खाए। इसलिए वो लोग को पसंद नहीं आएगा जो वास्तव में साधु लोग हैं, उनको साफ सुथरी एकदम प्योर चीज चाहिए होगी जिसमें खाली भगवान का यश होगा। तो आप ऐसा साहित्य लिखना चाहिए था, आपने ऐसा लिखा है। और श्लोक नंबर 15 में नारद मुनि ने अपने शिष्य को उसकी वास्तविक मिस्टेक बताई कि उससे क्या है, वो कहने लगे जुगुप्सितं धर्म कृतेनुशासत स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रम यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निर्वाणम् जना। जुगुप्सितं अर्थात तुमने बहुत ही अत्यंत ही घृणित कार्य किया है। धर्म कृते अनुशासित, धर्म के अनुसार तुमने क्या किया है, स्वभाव से महान व्यतिक्रम, जो वास्तव में भौतिक व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव होता है कि वो इंद्रिय तृप्ति का कार्य करें, और तुमने वही कार्य को करने की अनुमति दे दी है धर्म के अंदर, ग्रंथ के अंदर, अपने वेदों के अंदर बता दिया कि हाँ किस तरह से तुम अपनी भौतिक इंद्रियों की तृप्ति करना चाहते हो तो कैसे करो। यद वाक्य तो धर्म इति तरस्थे तो न मन्यते तस्य निर्वाणम जना, तो फिर अगर उन लोगों को जब आदत हो जाएगी ना ऐसे सब इंद्र तृप्ति करने की, तो तुमने जो निषेध बताया वो उनको याद ही नहीं आएगा ना। इसको हमने बहुत ही क्लियर बताया था कि जिस तरह से बलि करके फिर खाने का होता है वो काली को और इस तरह से, लेकिन भी लोगों को याद ही नहीं रहता है ना फिर कि इस तरह से करना है। लोग तो फिर अपना हैबिचुअल बना देते हैं इन अपराधों को, तो फिर ना ये वेद में भी बताया गया है ना ऐसे कर सकते हो आप, तो इसलिए नारद मुनि वेद व्यास को उसकी गलतियां बताते बताते आगे कहते हैं श्लोक नंबर 18 में तस्य एव हेतु प्रियतीते को विदु न लभ्यते यत् भ्रमताम् उपर्यदा तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालीन सर्व प्रगभीररहंसाम्। तस्यैव हेतु प्रियतीते को विदु, जो वास्तव में विद्वान होते हैं वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, न लभ्यते यद् भ्रमतात् उपर्यदा, वो लक्ष्य जो प्राप्त नहीं होता है कहाँ, अगर वो पूरा घूमते रहे ना ऊपर से लेकर नीचे के लोकों में कहीं प्राप्त नहीं होता वो वाला लक्ष्य, उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य देह मिला है। तल लभ्यते दुख वदन यतः सुखम, और ये जो तुमने दुख इस तरह से खत्म करो, भौतिक संसार के रोग इस तरह से खत्म करो, पुत्र नहीं है तो इस तरह से प्राप्त करो, पत्नी चाहिए तो इस तरह से प्राप्त करो, ज्ञान चाहिए तो इस तरह से प्राप्त करो, सौंदर्य चाहिए तो इस तरह से प्राप्त करो, अरे बाबा ये सुख तो उसी तरह से प्राप्त हो जाएंगे, दुख वद जिस तरह से तुम्हारे हिस्से की सुख तुम्हें दुख तुम्हें बगैर किसी प्रयत्न के प्राप्त हो रहे हैं, कोई प्रयत्न नहीं करता दुखों के लिए तो वे वो तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं तो सुख भी प्राप्त हो जाएंगे। कालेन सर्वत्र गभीर राम सा, जब समय आएगा तो तुम्हारी वस्तु तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, तो फिर प्रयत्न किसके लिए करो जो वाकई में प्राप्त होता नहीं है, और किसी लोक में अगर चले गए तो नहीं मिलेगा, ये मनुष्य जीवन खत्म हो गया तो न जाने कब अवसर मिले या फिर ना मिले, तो इसलिए उसी हेतु को प्राप्त करने के लिए विद्वान लोग जो है वो प्रयत्न करते हैं। और इस तरह से नारद मुनि ने वेद व्यास जी को उनके जो उन्होंने साहित्य लिखा उनके विषय में बताने के बाद अपने विषय में बताया कि मैं पहले दासी का पुत्र था, मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं था, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, कोई गुण नहीं था, लेकिन जब शुद्ध भक्त भगवान के शुद्ध भक्तों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ तो उसके कारण अब मैं देवर्षि बन गया हूँ। और क्या हुआ था, जब वो आए हमारे घर पे श्लोक नंबर 26 में उन्होंने बहुत अच्छा बताया, तत्रान्वहं कृष्ण गाथा प्रगायतं अनुग्रहेण श्रवणं मनोहरा ताशक्तयो मेनुपदं विष्णुवतः प्रिय श्रवस्यंगमामा भवद्रुचि। कि इस तरह से जब वो कृष्ण कथा करते थे तो मैं भी उनके समक्ष बैठकर सदैव निरंतर उस कृष्ण कथा को सुनता था, मुझे बहुत मनोहर लगता था, बहुत अनुग्रह हो गया था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं अनुश्रवण था, मैं कंटिन्यूस सुनना चाहता था, मेरा दिल करता था निरंतर मैं भगवान की कथाओं का श्रवण करूं। ता श्रद्धयो मेनुपदं विष्णुवतः, और इतनी श्रद्धा थी एक एक शब्द के अंदर, मैं बहुत ध्यान से सुनता था, प्रिय श्रवंगस्य मामा भवत रुचि, और इस तरह से मेरी रुचि भगवान के नाम में भगवान की कथाओं में बहुत तीव्रता से लग गई। और आगे बताया, तस्मिन् तदा लब्ध रुचिर् महामती प्रिय श्रवस्यस्य किल कलिता मतिर् मम। कि इस तरह से जब मेरी रुचि विकसित होने लगी भगवान के प्रिय नामों में, भगवान की प्रिय कथाओं में, तो प्रिय श्रवस्य खलिता मतिर् मम, भगवान पर मेरी मति अनवरत, मेरा ध्यान जो है वो भगवान पर टिक गया। और उसके बाद मुझे क्या रियलाइज हुआ, यया हमें तत् सदसत स्वमायया, कि जो भी सूक्ष्म और ये भौतिक शरीर है और सूक्ष्म शरीर, वो स्थूल और सूक्ष्म जो भी है वो तो सब माया है, पश्चिमयी ब्रह्मणि कल्पितम परे। और इस तरह से हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और मुझे पता चला कि मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ और मेरी संतुष्टि उसी भगवान की सेवा करने में है। तो मैंने किस तरह से सेवा की, अपने समस्त कर्मों को, अपने समस्त विचारों को भगवान को समर्पित कर दिया। जो वही कर्म जो मेरे बंधन का कारण बनते थे, अब वही कर्म मुझे मोक्ष प्रदान करेंगे। 33 में बहुत ही सुंदर बताया, आमयो यस्य भूतानां जायते येन सुव्रत तदेवं ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। आमयो यस्य भूतानां जायते येन सुव्रत, के वो वस्तु जो हमारी किसी व्याधि का या किसी बीमारी का कारण बनती है, तदेवम ह्यामयम द्रव्यम, वही वस्तु से न पुनादि चिकित्सितम, जब डॉक्टर उपचार करता है उसी वस्तु को अलग वे से देता है तो किस तरह से हमारी वो व्याधि संपूर्ण समाप्त हो जाती है, रोग ठीक हो जाता है। जैसे हम लोगों ने इसके बहुत सारे उदाहरण भी दिए थे कि दूध से हमें अपच हो जाता है और दही से डाइजेशन सिस्टम सही हो जाता है। तो ये कर्म जो है वो हमारे बंधन का कारण बनते हैं और इन्हीं कर्मों को यदि हम भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान की दिव्यता के कारण हमारे दिव्य कर्म हो जाते हैं और वही अकर्म व्यक्ति कर्म करता हुआ भी अकर्मी हो जाता है और कर्मों के बंधन से छूट जाता है। और यही भगवान का आदेश है। नारद मुनि ने श्लोक नंबर 36 में बताया, कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया, यदि वही कार्य भगवान के आदेशानुसार हम कार्य करते हुए मनुष्य निरंतर गृणन्ति गुणनामानि भगवान के नामों का, भगवान के गुणों का स्मरण करता है, कृष्ण नो स्मरणति च। अनुस्मरणति यानी निरंतर भगवान का स्मरण करता है। कैसे? वो भले अपने कार्य करता है लेकिन साथ में सदैव भगवान के पवित्र नाम का जप करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस चीज को बताया 38 में, इति मूर्त्या विधानेन मंत्र मूर्ति मूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शनम पुमान। इस प्रकार वही वास्तविक दृष्टा है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है। यानी कोई भौतिक रूप नहीं है लेकिन भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, तो वही भगवान हृदय के अंदर हमें दर्शन देते हैं। और इस तरह से भगवान के पवित्र नाम के जप करने के विषय में बताया, एमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवित्य मदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यम् स्वस्मिन् भावं च केशव। इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों का गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिकता का, फिर ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेमा भक्ति का वरदान दिया। अब क्योंकि भगवान के विषय में श्रवण करने से ही ये सब प्राप्त है, भगवान की कथाओं का श्रवण करने से ही हृदय के अंदर जो भौतिक मलिनता है, जो ये हमारी सबसे बड़ी मलिनता क्या है हृदय की, कि हम सोचते हैं कि भौतिक वस्तुओं से भी हमें संतुष्टि प्राप्त हो सकती है, लेकिन जब तक बोले अगर किसी को हम कि नहीं भौतिक वस्तुओं से संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, भगवान के पवित्र नाम को ग्रहण करने से होगी, लेकिन ये सुनकर समझ में नहीं आता। लेकिन जब इसको रियलाइज करता है ना कोई, तो उसे पता चलता है कि वाकई भौतिक वस्तुओं में तो कोई आनंद था ही नहीं। उसी तरह से आप भगवान की कथाओं का जब लिखोगे, भगवान की कथाओं का बखान करोगे, तो भगवान की कथाओं से इसको सुनकर क्या होगा, हृदय के अंदर प्रेम उत्पन्न होगा भगवान के लिए ना। जैसे हमने पढ़ा था, सद्यो हृदय वरुद्य तेतकृति भी शुश्रूष तत्क्षण, कि यदि पवित्र मन से कोई भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, तो अगर केवल सुनने की इच्छा भी करता है, भगवान की कथाओं को श्रवण करने की इच्छा भी करता है, तो भी क्या, सद्यो हृदय वरुद्य, भगवान आकर उसके हृदय के अंदर बंदी हो जाते हैं। और जिसे भगवान की प्राप्ति हो जाए, उसके जीवन के समस्त दुखों का, संकटों का नाश हो जाता है उसी क्षण। तो यहाँ पर नारद मुनि आज क्या बता रहे हैं कि इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक तो है ना सज्जन होते हैं और दूसरे दुर्जन होते हैं। इनको भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अत्यंत सुंदर रीति से बताया है। पहले सज्जन के विषय में पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया 7.15 में, चतुर्विधा भजन्ति माम जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। तो भगवान कहते हैं चार प्रकार के सुकीर्तिन होते हैं, यानी सज्जन लोग चार टाइप के होते हैं। श्री गोपाल ने बताया, नंबर एक, जब वे आपत्ति में पड़ते हैं और भगवान की शरण, भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, यानी आर्तो, ठीक है। उसके बाद अर्थार्थी, जब उन्हें धन की कमी महसूस होती है तब वो भगवान के पास आते हैं अर्थार्थी। जब वे ज्ञान में बढ़ जाते हैं यानी जिज्ञासु, और जब वे ईश्वर के विषय में अधिकाधिक जानना चाहते हैं अर्थात ज्ञानी। तो ये चार प्रकार के सज्जन है। सज्जन क्यों है? क्योंकि भले किसी भी भाव से आए, इनको शुद्ध भक्त नहीं कहा गया, सुकृतिनों कहा गया, कि वो अच्छे लोग हैं, सज्जन है, कि ये न के न प्रकार है, वो आए तो कैसे है, किधर है, वास्तविक स्थान पे भगवान की शरण में आए हैं, तो वो सज्जन है। और इस तरह से उनका कष्ट भगवान के पास आने से दूर हो जाएगा। और श्रील प्रभुपाद जी बताए चार टाइप के दुर्जन लोग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसका जिक्र भी भगवान श्री कृष्ण ने 7.15 में कहा, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रबत्यन्ते नराधमा मायया प्रहृत ज्ञान असुरम भावम आश्रित। पहले है मूढ़ा दुष्कृतिनो, वे जो प्रगतिशील सत्काम कर्म के प्रति आसक्त हैं और इस तरह अनेक कष्टों को भोगते हैं, सिर्फ दुष्कृतिनो, कार्य इसे करेंगे बहुत बहुत प्रगतिशील कार्य करेंगे, लेकिन फिर भी ना वेद का सोचेंगे ना शास्त्र का सोचेंगे, कुछ भी नहीं, बस कैसे भी करके अपने इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करेंगे, वो नराधम है। यानी लोगों में ऐसे हैं, मनुष्य बन गए नाम के, लेकिन कोई भी मनुष्य जैसा कार्य नहीं करते। नराधम वे जो प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त हैं और इस तरह से अनेक कष्टों को भोगते हैं, क्योंकि वो कार्य कर रहे हैं मनुष्य बनकर, कोई भी है ना रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, तो जाहिर सी बात है सारे वही कार्य उनके कष्टों का कारण बनते हैं। दूसरे वे जो इंद्र तृप्ति के गर्हित कार्य में लगे रहते हैं और इस तरह परिणाम भोगते हैं, यानी कि दुष्कृतिनो मूढ़ा, वो बेवकूफ है और इंद्र तृप्ति के कार्य करते रहते हैं, खाली उनके जीवन का लक्ष्य क्या होता है, इंद्र तृप्ति करना। और आगे माया पर रुत्त ज्ञान, यानी उसके पास श्री प्रभुपाद जी बताते हैं नंबर तीन, वे जो ज्ञान में तो अत्यंत समृद्ध हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार न कर सकने के कारण कष्ट पाते हैं। माया पहुत ज्ञान, ज्ञान है उनके पास लेकिन माया ने उनका ज्ञान हर लिया है, तो भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृत, वो मेरी शरण में नहीं आते हैं। और नंबर चार है, वे लोग जो नास्तिक कहलाते हैं और जानबूझकर भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं, वे आसुरम भावम, असुरी भाव होता है उनका, और भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं, भले ही वे सदा संकट में क्यों ना रहे, भले ही कष्ट भोगते रहते, लेकिन फिर भी कभी भगवान की शरण में नहीं आते हैं। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर इनके दुखों का कारण सबसे बड़ा ये नहीं है कि वो इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, इनके दुखों का कारण ये भी नहीं है कि उनको उनका ज्ञान है ना प्रफुल्लित नहीं हुआ, उनका दुखों का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो मेरी शरण में नहीं आए हैं, है ना। भगवान की शरण ग्रहण करने के बाद फिर भले आप अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्त, उसे साधु कहो, यदि वो भगवान की शरण में जाता है तो भले सबसे बड़ा पापी क्यों ना हो, तो आप सारे चाहे सुकृति न हो चाहे दुष्कृति न हो, सबके कष्टों का निवारण कैसे होगा, कैसे होगा उनके मतलब ये बताया यहाँ पर नारद मुनि ने। नारद मुनि कहते हैं संक्लेश निर्वाण मुशंति मानसा नान्यथा, केवल और केवल एक ही उपाय है इन समस्त लोगों के संकटों को उनके कष्टों को निवारण करने का, सिर्फ एक ही उपाय है, क्या, त्वमप्यदभ्रामश्रुत विश्रुतं विभु समाप्यते येन वेदं विभुत्सितं, कि आपने जो वेदों का मूढ़ रहस्य, जो वेदों का पका हुआ फल अपने पास छिपा के रखा है, उसको अब आपको सबको देना है। अब आपको क्या करना है, कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिससे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, और इससे क्या होगा, समाप्यते येन वेदां बुभुत्सितम्, के जो बहुत ज्यादा इच्छुक हैं दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विद्वान हैं, उनको उनकी ज्ञान पिपासा दूर होगी। प्राख्या ही दुख है मुहुरर्दितात्मना, और फिर और वो लोग जो भौतिक जगत में भौतिक दुखों के कारण पीड़ित हो रहे हैं, उनके भी कष्टों का निवारण होगा। संक्लेश निर्वाण उशंति मान्यता, इसके अतिरिक्त जब तक जीव भगवान के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ देता है, जब तक भगवान के साथ प्रेम करना शुरू नहीं कर देता है, जब तक भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करता है, जब तक अपनी वास्तविकता को नहीं समझता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, तब तक तो दुखों का खात्मा नहीं होगा। तो कृपा करके अब भगवान के विषय में डायरेक्ट से बताओ, धर्म प्रोज तकाई तवोत्र परमो, अब और कोई केतव नहीं रखना, किसी को ये नहीं बताना कि तुम्हें इस भौतिक जगत में कैसे सुख मिलेगा, किसी को ये मत बताना कि इस भौतिक शरीर को कैसे संतुष्ट कर सकते हो, अगर बताना है तो अब केवल ये बताओ यदि तुम अपनी संतुष्टि चाहते हो, यदि महात्माओं की संतुष्टि चाहते हो, और यदि दुष्ट जो हैं, जो बिल्कुल गिरे हुए हैं संसार के इन भौतिक दुखों से, उन विचारों का दुख खत्म करना चाहते थे, एक काम करो, आप केवल भगवान के विषय में वर्णन करो, वह सर्वशक्ति भगवान जो वेदों का गूढ़ रहस्य है उसके विषय में खत्म वर्णन करो, क्योंकि तब तक जीव संकटों का कोई निवारण नहीं होगा जब तक जीव भगवान के विषय में नहीं सुनेगा, भगवान की कथा का श्रवण नहीं करेगा। इस प्रकार नारद मुनि द्वारा वेद व्यास को श्रीमद भागवतम का उपदेश के शीर्षक नामक इस पंचम अध्याय का समापन हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं आगे भी अच्छे से अपनी सेवा कर सकूं। हरे कृष्ण।